4 जून दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। मायावती ने गठबंधन से हटने का किया औपचारिक ऐलान, कहा अकेले चुनाव लड़ेंगी।
वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।
चेन्नई में अभूतपूर्व जल संकट, मेट्रो के एसी बंद किए गए।
हम लोग जो है 40,000 लीटर खरीदते हैं रोज यूज के लिए। इसके दो कारण है, एक तो बारिश नहीं हुई पिछले साल इतना, जो ये साल को हम ड्रॉट अफेक्टेड घोषित किए गए, तो पानी है ही नहीं।
जिक्र होगा राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और विश्व कप क्रिकेट का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सर्वप्रिया सांगवान के साथ। भारत में लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ महागठबंधन आधिकारिक तौर पर टूट गया है। ये गठबंधन मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच था। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत और बधाई सबको, सब अपने अपने रास्ते चलेंगे। चीन ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की कड़े शब्दों में आलोचना की है। माइक पोम्पियो ने टियानानमेन नरसंहार की 30वीं सालगिरह पर चीन के राजनीतिक सिस्टम को लेकर बयानबाजी की थी। पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि चीन कभी एक खुला और सहिष्णु समाज बन सकता है। ट्रंप सरकार में चीन को लेकर अमेरिका का रवैया काफी सख्त रहा है और ये आलोचना उसी दिशा में देखी जा रही है। टियानानमेन नरसंहार 1989 में छात्रों का चीनी सरकार के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें सैकड़ों लोग सैनिकों की गोलियों का शिकार हुए थे। अब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग ने इसका जवाब इन शब्दों में दिया। ऐसे बयान इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए हैं। हमारी सलाह है कि ये लोग आईना देखें और अपने काम से काम रखें, चीन के अंदरूनी मामलों में दखल ना दें और ऐसे शब्दों से बचें जो अमेरिका चीन के आपसी भरोसे और सहयोग को नुकसान पहुंचाए, वरना अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोग इन पर सिर्फ हंसेंगे। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग। चलते हैं अगली खबर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन की 3 दिन की यात्रा के लिए वहां पहुंच चुके हैं। पहले दिन के समारोह के बाद वे बिजनेस लीडर से मिले और उनसे कहा कि जैसे ही ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ता है वे ब्रिटेन के साथ अपना कारोबार बढ़ाएंगे। हालांकि पत्रकार बता रहे हैं कि पिछले साल ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा में जितनी कंपनियां आई थीं, इस बार उससे काफी कम कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इसके बाद वे प्रधानमंत्री टेरेसा मे से मिले, जो कि अब जल्द ही ब्रिटेन की देखरेख का ही काम संभालेंगी जब तक उनकी पार्टी प्रधानमंत्री पद का वारिस नहीं ढूंढ लेती। पिछली बार की तरह ही ट्रंप को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लंदन के मेयर सादिक खान भी उनकी यात्रा को लेकर बयान दे रहे हैं।
I think it's really important that we have good relations with the USA and that includes the president there, our closest ally.
ये जरूरी है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें और इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं। वे हमारे सबसे करीबी सहयोगी हैं और हमारा अमेरिका से खास रिश्ता है। मेरा विरोध इस बात पर है कि उन्हें स्टेट विजिट मिल रही है। हमें सावधान रहना होगा कि ऐसा न लगे कि राष्ट्रपति की कही कुछ बातों पर हमारी भी सहमति है, जैसे मैक्सिकन बॉर्डर पर बच्चों को अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा या उनके रेसिस्ट और आपत्तिजनक बयान या फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते से उनका बाहर निकल जाना। तो ये कह रहे थे लंदन के मेयर सादिक खान ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा पर। एक तरफ जहां खबरें आ रही हैं कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के दौरान जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाएंगी, वहीं दुनिया की 200 सबसे बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से उन्हें $100 अरब का नुकसान झेलना पड़ सकता है। पर्यावरण के लिए काम कर रही संस्था CDP को कंपनियों ने बात कही है। कंपनियों का कहना है कि अगले 5 साल में ये नुकसान दिखने शुरू होंगे। उनका कहना है कि बढ़ता तापमान और खराब मौसम उन पर $100 अरब का अतिरिक्त भार डाल सकते हैं। वहीं CDP संस्था की रिपोर्ट के लेखक कहते हैं कि जितना कंपनियों को लग रहा है नुकसान इससे भी ज़्यादा होगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में गोलीबारी हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा है जिस पर शक है कि वो बंदूक के साथ एक होटल में दाखिल हुआ और होटल के कमरों में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उनका कहना है कि गोलीबारी के बाद अभियुक्त एक वाहन में वहां से भाग निकला। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवाद पार्टी गठबंधन पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगता दिख रहा है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एसपी के कोर वोटर माने जाने वाले यादवों ने भी गठबंधन को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यादव बहुल सीटों पर भी एसपी और बीएसपी उम्मीदवारों की हार हुई है। मुलायम परिवार के सदस्यों की हार का हवाला देते हुए मायावती ने कहा कि जब तक अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं को निष्ठावान नहीं बनाते तब तक गठबंधन के भविष्य को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
23 मई के बाद से ही जो बात कई लोग कह रहे थे, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उसका ऐलान आज सीधे तौर पर कर दिया।
वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।
मायावती ने ये बात सोमवार को दिल्ली में पार्टी की हुई चुनाव समीक्षा बैठक के बाद की। हालांकि मायावती ने कहा कि चुनाव अलग लड़ने का ये फैसला उनके शब्दों में कोई परमानेंट ब्रेक नहीं है, लेकिन चुनाव में गठबंधन के खराब प्रदर्शन के लिए जिस तरह से उन्होंने सपा समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया उससे ये साफ है कि ये दूरी अब शायद कम न हो। मायावती ने सपा से दोबारा निकट संबंध कायम करने के लिए शर्त भी रख डाली।
यदि मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई ब्रेक, परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है।
जानकार कह रहे हैं कि अब यह कैसे तय होगा कि अखिलेश अपने समर्थकों में मिशनरी भावना भर पाए हैं या नहीं, और अगर गठबंधन के टूटने या उसमें दूरी बनाने का ऐलान किया जाना भी था तो ये दोनों नेताओं यानी अखिलेश और मायावती को मिलकर करना था, न कि सिर्फ एक तरफा तौर पर जैसा कि मायावती ने किया। इस बात को शायद अखिलेश यादव भी बेहतर तौर पर समझते हैं, इसीलिए मायावती की घोषणा पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने जवाब में कहा,
मैं गठबंधन को कहकर के यही कहूंगा कि अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा, और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे।
23 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी राजनीतिज्ञ को इस परिणाम से हुआ है तो वो हैं अखिलेश यादव, क्योंकि बीएसपी से गठबंधन के बाद भी उनकी सीटें 2014 यानी 5 पर ही अटकी रह गईं, जबकि मायावती शून्य से 10 सीटों का आंकड़ा हासिल कर पाने में कामयाब रहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मायावती के दावे के उलट बीएसपी के वोटरों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट ही नहीं डाला। इधर गठबंधन में पैदा हुए इस खिंचाव पर बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा,
नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस प्रकार अवसरवादी गठबंधन कहीं भी बने हुए, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटक में, सब जगह ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी एक सकारात्मक राजनीति करने वाले, विकास आधारित राजनीति करने वाले, नए भारत की स्थापना के लिए राजनीति करने वाले नेता हैं, बट लेकिन ये लोग पूरी एक पुराना एक घिसा पिटा राजनीतिक इक्वेशन को लेकर आज भी चल रहे हैं, ये सोच में बदलाव की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें इसलिए खाली हो गई हैं क्योंकि वहां के विधायकों ने चुनाव लड़ा था और वो लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
थोड़ी देर पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक अंबिकानंद सहाय से संपर्क किया और पूछा कि मायावती के गठबंधन तोड़ने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं।
देखिए, इसके दो स्पष्ट संकेत हैं कि पहले जानना होगा कि यह गठबंधन में क्या बातें तय हुई थी। मेरे ख्याल से तय ये हुआ था कि अगर गठबंधन बहुत अच्छा करेगा और नरेंद्र मोदी जी आशा से कम सीटें पाएंगे तो बुआ जी को यानी मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा और 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा अखिलेश जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे महागठबंधन की ओर से। तो जब 9 मन तेल नहीं मिली तो राधा कैसे नाच सकती है, नहीं नाच सकती है, मतलब प्रधानमंत्री वाला सपना ध्वस्त हो गया तो अब यूपी दोनों का बेस है, ऑलमोस्ट इक्वल बेस है दोनों का, तो वो अकेले कैसे प्रोजेक्ट कर सकती हैं?
अच्छा ये बताइए, मायावती जो ये कह रही हैं कि अखिलेश यादवों का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए उनको, इसको इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं?
देखिए इसमें 90% वो गलत बातें कर रही हैं। ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो भी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश को ठीक से जानता है वो जानता है कि मायावती घोसी लालगंज गाजीपुर की सीट जीत ही नहीं सकती है बगैर यादव समुदाय के भारी समर्थन के बगैर। तो ये तीनों सीट मायावती जीतती हैं, यादवों का भरपूर समर्थन उनको मिलता है और वो सीटें जीतती हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं। वो इस बात को याद दिला रही है कि परिवार में कलह रहा, अष्टपाल जी ने अलग पार्टी बनाई, उससे कुछ यादवों का वोट छिटका या कुछ मोदी जी की तरफ गया। लेकिन बड़ी बात ये है कि देखिए ये तो गलत कह रही है मायावती। दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि देखिए ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लहर में चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं चलता है। अच्छा ये इस किस्म का वेव था जो कि शायद पहली बार एग्जिट पोल्स्टर्स इस देश में सही हुए, अधिकांश पत्रकार इस टॉर्नेडो को इस वेव को देख नहीं पाए। ऊपर से लगता था कि ये तो सिर्फ ग्रीष्मकालीन लहर है, गर्मी की लहर है, लू चल रही है और कोई विशेष मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा था नरेंद्र मोदी स्वयं का व्यक्तित्व, मुद्दा था स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग लीडर, इस पे वोट पड़ा और साथ में पुलवामा बालाकोट वगैरह सब जुड़ते चले गए उसी में। तो एक एक लहर पैदा हुई और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ध्वस्त हो गई, कास्ट बैरियर्स क्रम्बल कर गए बहुत हद तक।
ये तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए अगर इस तरह मायावती का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने एलआई रखती हैं फिर उनको बदल देती हैं, तो इससे तो उनको और अनप्रेडिक्टेबल नेता के रूप में माना जाएगा आगे भी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें कही। और उनका तीन बार तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और मेरा तो ये मानना है कि आज भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत है नहीं, वो अपना दलित वोट बैंक अलग बना रहे हैं तो आज उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी अगर दोस्ती का हाथ भाजपा बढ़ाएगी तो उसके बहुत से कारण हैं। मायावती जी एक क्षण का विलंब नहीं करेंगी और साथ हो जाएंगी, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय। लगातार दूसरे वर्ष केरल में निपा वायरस का मामला सामने आया है। एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में कम से कम 4 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और 84 अन्य लोगों पर घर में निगरानी रखी जा रही है। ये 86 लोग इस रोग से संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आए थे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने बीबीसी को बताया है कि पिछले साल के अनुभव की वजह से सरकार को इस बार स्थिति पर नियंत्रण रखने में मदद मिली है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आज सुबह जब पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पुष्टि आई तो केरला सरकार एक तरह से तैयार ही थी। 4 दिन पहले जब एक मरीज के हालात पे शक हुआ तो डॉक्टरों ने फौरन कर्नाटका के मणिपाल वायरस सेंटर और केरला के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सैंपल भेज दिया था। दोनों इंस्टीट्यूट ने पुष्टि की कि 23 साल का एर्नाकुलम का निवासी निपा का मरीज है। फिर देश के सबसे बड़े वायरोलॉजी के इंस्टीट्यूट पुणे को सैंपल भेजा गया और उसने भी इसकी पुष्टि कर दी। केरला के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के शैलजा ने बीबीसी को बताया, हाँ परिस्थिति काबू में है और मरीज का इलाज चल रहा है। दरअसल पिछले साल जब निपा वायरस कोलिकोर में फैला था तो वो अनुभव हमें आज काम आ रहा है। उसी तजुर्बे से हम 86 लोग जो इस मरीज से संपर्क में थे उनको हमने अपनी निगरानी में रखा है। उनमें से 2 लोगों को एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया है क्योंकि उनको थोड़ा सा बुखार और खांसी है, और बाकी 84 लोगों को घर पर क्वारंटाइन किया गया है और उनको निरंतर निगरानी में रखा गया है। ये थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के शैलजा के शब्द। पिछले साल 18 लोगों को निपा वायरस हुआ था और उनमें से 16 लोगों की मौत हो गई थी। जो पहला मरीज था वह अस्पताल के जनरल वार्ड में ही था और जब उसकी हालत बिगड़ती गई तो कई लोग उसको देखने गए थे। इसी तरह करीब 3,500 लोगों पर शक था कि वो वायरस के मरीज हो सकते हैं। बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंसेज यानी निमहांस के प्रोफेसर ऑफ वायरोलॉजी डॉक्टर वी रवि का मानना है कि जो केरला सरकार ने पिछले साल किया उसने एक तरह से दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया। केरला और केंद्र सरकार ने सिर्फ 42 दिनों में इस वायरस को नियंत्रण में ला लिया था, लेकिन किस तरह के मरीज निपा वायरस के शिकार बनते हैं, डॉक्टर रवि ने कहा। वायरस का पहला लक्षण ये होता है कि मरीज को खांसी बुखार होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बाद एंसेफलाइटिस यानी मस्तिष्क का बुखार होता है और मरीज मर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को जो खांसी बुखार या सांस लेने के नली में इन्फेक्शन होने से उनको निपा वायरस हो जाता है। दरअसल जो लोग उनसे संपर्क करते हैं उनको होशियार रहना चाहिए। ये थे डॉक्टर रवि के शब्द। डॉक्टर रवि का कहना है कि निपा वायरस नौजवानों और वयस्कों को आता है। निपा वायरस चमगादार से फैलता है जब वो पेड़ में लगे हुए मेवे को खाते हैं। मतलब ये कि इंसान को होशियार रहने की सख्त जरूरत है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हार के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंटरव्यू के बाद ये लड़ाई फिर सामने आ गई है। गहलोत ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हार की जिम्मेदारी सामूहिक है और सचिन पायलट को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पायलट ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
एक तरफ सत्ता है और एक तरफ संगठन। राजस्थान में पार्टी की करारी हार के बाद कोई भी नेता जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा, जोधपुर में पराजय का पूरा विश्लेषण होना चाहिए। राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं और कांग्रेस इनमें से एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत पार्टी प्रत्याशी थे, लेकिन वे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के सामने पराजित हो गए। गहलोत को पायलट के उस बयान का हवाला देकर पूछा गया था जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने जोधपुर में जीत की जमानत दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये अच्छी बात है कि पायलट ने जीत की जमानत दी, अब उन्हें हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इस बारे में पायलट ने हैरानी जताई लेकिन कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सत्तारूढ़ पार्टी में मची अंतर्कलह के बीच बीजेपी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। राज्य के बीजेपी नेता कहते रहे हैं कि ये सरकार अपने अंतर्विरोधों में ही गिर जाएगी। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने बीबीसी से कहा, बीजेपी लोकतंत्र में भरोसा करती है, सरकार को गिराना उनकी नीति नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं, कांग्रेस में एक कलह कई महीनों से चल रही है।
ये लड़ाई पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव के समय भी ये लड़ाई चली, फिर मुख्यमंत्री कौन बने ये लड़ाई चली, फिर डिपार्टमेंट क्या हो ये लड़ाई चली, फिर उप मुख्यमंत्री का आवास निवास क्या हो, सचिवालय में रूम कौन सा हो, ये सारा झगड़ा इनका चला। और लोकसभा चुनाव के समय फिर इनकी जो लड़ाई थी वो गहरा गई और राजस्थान को हम एक सशक्त विपक्ष के नाते इनके ऊपर छोड़ने वाले नहीं हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा कहती है, संख्या बल कांग्रेस के हक में है और बीजेपी के इरादे कामयाब नहीं होंगे।
बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करती है, लेकिन वो जानते इस बात को कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार है राजस्थान और निर्दलीय विधायकों का भी बाहर से समर्थन है, तो ऐसी अवस्था में सरकार को कोई खतरा नहीं है। और चूंकि उनको एक प्रचंड जनादेश केंद्र के स्तर पर मिला है तो उससे वो बड़े बोल बोलने लगे, लेकिन सच्चाई है कि किसी को भी ये शोभा नहीं देता कि एक स्थायी सरकार जिसके पास पूरा बहुमत है उसे गिराने की बातें सार्वजनिक रूप से करे। इसका तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता लौटूत है और सरकारों को गिरा करके अपना मैंडेट बनाना चाहती, मैन्युफैक्चर करना चाहती।
सियासत पर नजर रखने वाले स्थानीय पत्रकार अवधेश साकोदिया कहते हैं, यह साफ साफ कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई है।
पूरा ये जो पूरी इनकी आपसी लड़ाई है वो सत्ता का एक संघर्ष है एक तरह से, कि कौन सत्ता का सिरमौर राजस्थान में रहे।
पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले ताकि दोनों एकजुटता की तस्वीर प्रस्तुत कर सके, लेकिन कहते हैं राजनीति में जो दिखता है होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। नारायण बारेट, बीबीसी जयपुर।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% करने की मंजूरी कैबिनेट बैठक में दे दी है। ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव से पहले की थी और इसे वचन पत्र में भी शामिल किया गया था, लेकिन इस साल मार्च में सरकार ने इसे बढ़ा भी दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया था। पेश है भोपाल से सुरेनिया सिंह की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को अब 14% के बजाय 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया है। सरकार बनने के बाद कमलनाथ ने 8 मार्च को इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन 10 दिन बाद ही फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने नए सिरे से कोशिश की और उन राज्यों का अध्ययन किया जहाँ पर यह लागू है। इसे अब कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के लोकेंद्र गुर्जर ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इसे विधानसभा में लाकर जल्द से जल्द पारित किया जाए।
और मैं निवेदन करता हूं कि जो अभी मानसून सत्र आ रहा है उसमें ये इसको विधानसभा में इस विधेयक को पारित करें और केंद्र के लिए भेजें, जिससे कि जो बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस में जो इच्छा मतलब आरक्षण ओबीसी को 27% आरक्षण देने की इच्छा नहीं है, ये सब सामने आ जाएगी। कांग्रेस देना चाहती है लेकिन सेंट्रल जाएगा तब कौन इसको रोकता क्या करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी इसको विधानसभा में पारित करके और सेंट्रल के लिए भेज दें और 27% आरक्षण जो आने वाले अभी जो भी भर्तियां हैं जो भी एजुकेशन के जो अभी एडमिशन होने वाले हैं उनमें सब में मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू होना चाहिए और मैं इसके लिए सीएम साहब का।
वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी अभी भी कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है,
आज तक किसी भी स्टेट में कांग्रेस रूल्ड स्टेट भी रहा हो तो कांग्रेस ने कभी 27% का आरक्षण न दिया है और न ही देने का जतन किया है। चुनाव के चलते काम किया था, अध्यादेश लाए थे इसलिए लिया, वो भी हाईकोर्ट ने वापस कर ही दिया था। दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण है उसको आज भी मध्य प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद भी, हालांकि उसमें आचार संहिता का कोई इश्यू था भी नहीं, उसके पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं किया है और उसकी कोई प्रोसेस उन्होंने उस तरफ, तो ये लड़ाने भड़ाने का काम कर रहे हैं संवैधानिक तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उसका पालन करने की बजाय।
फिलहाल ओबीसी को मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण मिल रहा है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे विधानसभा के मानसून सत्र में लाने का रास्ता खुल गया है, जिसके बाद ये बिल बनने के साथ ही लागू हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एससी एसटी को फिलहाल 36% आरक्षण मिल रहा है। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इस समय भीषण जल संकट से गुजर रही है। उत्तर पूर्व मानसून के असफल हो जाने के कारण जल की आपूर्ति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस संकट का असर गरीबों के अलावा बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। कम से कम एक शख्स ने इस संकट की वजह से राज्य को छोड़कर पड़ोसी राज्य केरल में रहने का फैसला किया है। सुनिए एक बार फिर इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
जब कभी पानी की किल्लत होती है तो अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार चेन्नई में हालात ऐसे हैं कि अच्छे खासे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों में भी पानी की सप्लाई करीब 50% कम हो गई है। चेन्नई के ओएमआर इलाके में आपको हर तरह के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे जहां ज्यादातर आईटी उद्योग में काम करने वाले लोग रहते हैं। यहां के निवासी देश के अलग अलग राज्यों से यहां आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश बिहार जैसे जगहों से। ओएमआर में पानी की कितनी कमी हो गई है इसके बारे में वहाँ रहने वाले निवासियों के एक संघ के अध्यक्ष हर्षा कोड़ा ने बीबीसी को बताया,
50% से कम मिल रहा है। हम जो डेली हमें देखिए, हमारा जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 50 अपार्टमेंट है, 56 अपार्टमेंट है और यहाँ पे हम लोग जो है 40,000 लीटर खरीदते हैं रोज यूज के लिए पूरे फ्लैट्स के लिए। अब तो हमें 20,000 से भी कम मिल रहा है डेली। इसके दो कारण है, एक तो बारिश नहीं हुई पिछले साल इतना, जो ये साल तो हम ड्राउट अफेक्टेड घोषित किए गए तो पानी है ही नहीं और जो पानी के टैंकर्स जो है वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस से पानी लेके आते हैं, क्वारीज से या डीप वेल्स से लेके आते हैं, तो उसमें जो है एक परेशानी है कि आरटीओ पुलिस जो तहसीलदार कलेक्टर उनकी तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
कोड़ा का कहना था कि इस सारे इलाके में कहीं भी पानी पाइपलाइन से सप्लाई नहीं होता है बल्कि वाटर टैंकरों से पानी दिया जाता है और मार्च के महीने से यहां की जमीन का जल स्तर कम होने के कारण वाटर टैंकर से भी पानी कम आना शुरू हो गया। चेन्नई रेंज या चेन्नई की बारिश नाम से एक ऐप शुरू करने वाले के श्रीकांत ने बताया, चेन्नई में उत्तर पूर्व मॉनसून आता है और ये अक्टूबर के महीने से दिसंबर तक आता है, लेकिन पिछले साल ये अच्छा मॉनसून नहीं था। मार्च के महीने से यहाँ के जलाशयों में पानी कम हो गया और लोगों को वाटर टैंकरों पर मोहताज होना पड़ा। ये थे केसरीकांत के शब्द। आईटी कंपनियों से लेकर कई दूसरे उद्योगों पर पानी की कमी का बुरा असर पड़ा है। कुछ दफ्तरों में तो टॉयलेट्स में भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी की कमी की वजह से चेन्नई मेट्रो में एसी बंद करने की हिदायत दी गई है। ऐसे हालात की वजह से लोग चेन्नई छोड़कर दूसरी जगहों में बसना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। पर्यावरणविद और शोधकर्ता धर्मेश शाह ने 3 महीने पहले चेन्नई छोड़कर केरला के इडुक्की जिले में अपने परिवार के साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया है। धर्मेश चेन्नई में ही बड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने सालों से पानी की कमी को देखने के बाद केरला जाने पर मजबूर हो गए। धर्मेश शाह ने इस बारे में कहा,
चेन्नई में बचपन से है तो वहाँ पे मेन दिक्कत तो यही एनवायरमेंटल इश्यू, पर्यावरण को देखे तो चेन्नई का भी काफी बुरा हाल है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है उस स्थिति का वो बहुत बुरा है। तो पानी का जो इश्यू है वो साल पर साल आता ही रहता था। हर साल जैसे ही समर शुरू होते थे तो
चेन्नई रेंज ऐप बनाने वाले श्रीकांत का कहना है कि चेन्नई में पानी की परिस्थिति आने वाले हफ्तों में एक ही तरह सुधर सकती है। अगर कर्नाटका की कावेरी नदी में दक्षिण पूर्वी मॉनसून अच्छा आया और मेट्टूर बांध से और ज्यादा पानी चेन्नई के लिए छोड़ा जाए, नहीं तो श्रीकांत का डर ये है कि अगले अक्टूबर तक चेन्नई वासियों को इसी तरह के हालात सहन करते रहने होंगे। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
इस समय इंग्लैंड में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला होता हुआ, श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 182 रन बनाए थे, तभी बारिश ने खेल को रोक दिया था। हमारी साथी सूर्यांशी पांडे इस मैच पर नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले तो बताइए श्रीलंका की इनिंग कैसी थी?
ये कह सकते हैं रेहान जी कि श्रीलंका पानी पानी हो गई अफगानिस्तान के साथ मुकाबला करते हुए। कोई भी खिलाड़ी उस स्तर पर नहीं खेल पाया जिस स्तर पर विश्व कप में खेलना चाहिए। और अगर स्कोर की बात करें तो जब बारिश हुई तब 33वां ओवर चल रहा था और 182 रन बनाए थे श्रीलंका ने और 8 विकेट का नुकसान हो चुका था। और सबसे ज़्यादा स्कोर किया था परेरा ने, जिन्होंने 78 रन बनाए थे, और करुणा रत्ने ने 45 गेंदों में 30 रन बनाए थे। और विकेट की अगर बात करें तो अफगानिस्तान ने मोहम्मद नवी जो हैं वो 4 विकेट उन्होंने लिए थे और 30 रन उन्होंने बस दिए थे। तो ऐसे में अफगानिस्तान ज़्यादा बेहतर टीम नज़र आई थी। और अगर हम पुराने साल की भी बात करें तो एशिया कप में श्रीलंका का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो ख़त्म करने वाली यही अफगानिस्तान की टीम थी जिन्होंने बाहर निकाल दिया था श्रीलंका को। और अगर लास्ट विश्व कप से अब तक की बात करें तो अफगानिस्तान ने ज़्यादा ODI मुकाबले जीते हैं श्रीलंका से। तो ये ट्रिविया ये बताता है कि अफगानिस्तान से जिस तरह से सोचा जा रहा था कि ये नई टीम है और विश्व कप खेल रही है तो श्रीलंका धो डालेगी, लेकिन यहाँ पर मैदान को तो पानी ने धो ही डाला और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को धो डाला है।
अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए फ्रेंच ओपन पर, वहां से क्या खबर है रोला गैरों से?
हाँ, एक बात मैं रिहान जी बताना यहाँ पर भूल गए, वो ये बात है कि अब अगर ये सीमित होता है तो ये 33 या 25 ओवर का ये होगा और 171 का स्कोर टारगेट शायद दिया जाएगा अफगानिस्तान को। तो ये इसकी अभी हाल में अपडेट है। और अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो अभी मुकाबला जो है चल रहा है मेन सिंगल्स में स्टैन वावरिंका का और रॉजर फेडरर का, और निशिकोरी और राफेल नडाल का, दोनों का मुकाबला चल रहा है। तो वहीं वेमेन सिंगल्स में स्लोन स्टीफेंस जोहाना कोंता से हार गई हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यांशी आपका। और सभा के अंत में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ महागठबंधन आधिकारिक तौर पर टूट गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। चीन ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की कड़े शब्दों में आलोचना की है कि अमरीका अपने काम से काम रखे। अमरीका ने कहा था कि अमरीका ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि चीन कभी एक खुला और सहिष्णु समाज बन सकता है। अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन की 3 दिन की यात्रा के लिए वहां पहुंच चुके हैं। पहले दिन के समारोह के बाद वे बिजनेस लीडर से मिले और उनसे कहा कि वे ब्रिटेन के साथ अपना कारोबार बढ़ाएंगे। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।